चक्षुर्म्याम अभिविक्ष्य, दक्ष प्रजापति की जो चक्षु थी, आंखें थी, वो टेढ़ी हो गई। भक्तों, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और श्रीधर स्वामी कहते हैं क्रोध सबसे पहले आंखों में आता है, आंखों में क्रोध आता है, और आंखों में आए हुए क्रोध को यदि हम दबा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वह क्रोध वाणी में आ जाता है। वाणी में आए हुए क्रोध को दबा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर वह हाथ और पांव में आ जाता है, एक मारपीट शुरू हो जाती है। आंखों में क्रोध कैसे आता है? आप लोगों ने कभी देखा होगा, गाड़ी चलाने वाले जो होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कभी हॉर्न मारते हैं, आगे वाला साइड नहीं देता है, ओवरटेक करने नहीं देता है, बहुत बहुत हॉर्न मारने पर भी वो साइड नहीं देता है, फिर कैसे भी करके उसके बाजू में जाकर जब ओवरटेक होता है तो एक दूसरे के सामने ऐसा घूर कर देखते हैं, लगता है अभी आंखों से जलाकर भस्म कर देंगे। क्रोध की दृष्टि, आंखें लाल हो जाती है, वो लोग उतरते नहीं है लेकिन बिल्कुल बस ऐसा घूर कर देखते हैं, लगता है बस अभी जलकर भस्म हो जाएगा। और उसमें भी यदि सामने वाले ने ब्रेक मार दी तो ये भी ब्रेक मारता है, फिर आंखों से वह क्रोध वाणी में आ जाता है, गाली शुरू हो जाती है, फिर सामने वाले ने भी गाली शुरू कर दी, फिर वह क्रोध हाथ और पांव में आ जाता है, एक दूसरे को मारने लगता है। ये है क्रोध का। तो मृडम शिवम, शिव जी से आदर न प्राप्त करके दक्ष प्रजापति की आंखें जो थी टेढ़ी हो गई। श्रीधर स्वामी कहते हैं वामम वक्रम, बोले यथा भवती तथा अभिविक्ष, जो व्यक्ति जैसा होता है ना उसकी आंखें वैसी होती है। इसकी आंखें टेढ़ी हो गई क्योंकि ये टेढ़ा था, दक्ष प्रजापति पूरा टेढ़ा था। अब सभाओं में हजारों लोग खड़े हो गए, एक बेचारे शिवजी खड़े नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम थी, कोई तकलीफ नहीं थी, परंतु दक्ष प्रजापति को सब लोग खड़े हुए ये नहीं दिखा, एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ ये दिखा। कुछ लोगों में यही होता है, खास करके हम में, किसी ने भोजन में सब कुछ दिया है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, सब कुछ है, लेकिन पापड़ नहीं है या चटनी नहीं है, तो कहते हैं यार चटनी नहीं है, यार चटनी नहीं है, अरे सब्जी दिखाई नहीं दे रही है, रोटी नहीं दिखाई दे रही है, चावल और दाल दिखाई नहीं दे, नहीं यार चटनी नहीं है। जो चीज मिली है उसका सुख नहीं भोगतेगा, जो नहीं मिली है उसी की ओर देखते रहेगा, खास करके माताओं में स्वभाव होता है, कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। सब लोग खड़े हुए नहीं देखा और शिवजी, सब लोग खड़े हुए नहीं देखा, शिवजी नहीं खड़े हुए, क्रोधित हो गए। दहन इव, आंखें कैसी हो गई, दहन अग्नि के समान जलने लगी, और जलते हुए जिस महादेव का, जिस शिवजी का आदर और सत्कार और सम्मान करना चाहिए, दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर शिवजी को क्रोध करके बोलने लगे, क्या कहे आइए सुनते हैं। श्रूयताम् ब्रह्मरुषर्यो सह देवा सहाग्नय साधुनाम् ब्रूवतो वृत्तम् नाज्ञानान् च मत्सराम्। दक्ष प्रजापति आए हैं, बैठे, यज्ञ भज्ञ सब बाजू में रहा, सबसे पहले अपने स्थान में बैठकर माइक हाथ में ले लिया और कहा हे मेहुल प्रभु आवाज बढ़ाओ, आवाज को बढ़ा दिया, और फिर माइक हाथ में लेकर दक्ष प्रजापति देवा, हे देवताओं, सह अग्नय, हे अग्नियो, ब्रह्म ऋषय, हे ब्रह्मर्षियो, वशिष्ठ, नारद, असित, देवल, व्यास, श्रीयताम, सुनो। ये लोगों ने मन में कहा होगा सुन ही रहे, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप, लेकिन दक्ष प्रजापति कहते हैं श्रीयताम, सुनो। बोले क्या सुने? साधुनाम मृत वृत्तम न आज्ञानात न च मत्सरात। साधुओं का चरित्र सुनो। अब साधु लोग बिगड़ गए हैं। दक्ष प्रजापति कहने लगे कि आज तक तो साधु लोग ठीक से रहते थे, अब अपने दामाद की ओर इशारा करके अब साधु भी बिगड़े हैं। अब साधुओं का चरित्र सुनो। मैत्र ऋषि कहते हैं और दक्ष प्रजापति माइक हाथ में लेकर कह रहा है, न अज्ञानात्, मैं साधु का चरित्र सुना रहा हूं अज्ञान के कारण नहीं, पूरा पूरा ज्ञान है मुझ में। देखिए यहां पर एक सिद्धांत स्थापित होता है, जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना कि मैं ज्ञानी हूं वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ये दक्ष प्रजापति कह रहा है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञान से नहीं बोल रहा हूं, पूर्ण ज्ञान से बोल रहा हूं। अपने आप को ज्ञानी कहने वाला सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इस संसार में जितने भी महात्मा हो गए, जितने भी पंडित हो गए, जितने भी भगवान के विशाल बड़े भक्त हो गए, उन्होंने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं कहा, कभी भी अपने आप को ज्ञानी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भक्ति का एक स्वभाव है, जो बड़ा होता है वे अपने आप को तुच्छ समझता है, जो ज्ञानी होता है वह अपने आप को सदैव मूर्ख समझता है, सदैव। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, जितने बड़े बड़े लोग हो गए अपने आप को बहुत हीन समझते हैं, अपने आप को मूर्ख कहते हैं। यहां तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हो गए, जिन्होंने दिव्य ग्रंथ लिखा चैतन्य चरितामृत, और उस ग्रंथ के प्रारंभ में कहते हैं, पूरी शेर कीट हजते मुही से लघिष्ट। बोले मैं इतना बड़ा ग्रंथ रचने जा रहा हूं, परंतु मैं तो भगवान की बनाई हुई 84 लाख योनि में सबसे निम्न कीड़े के से भी गया गुजरा जीव, मैं क्या भगवान के बारे में कहूंगा। और थे सबसे महान, अपने आप को तुच्छ समझते, हीन समझते हैं। भक्तों प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, सही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। वास्तव में जिसके हृदय में पूर्ण ज्ञान होता है, जिसके हृदय में वास्तविक भगवान की भक्ति होती है, वो तो यही समझता है कि मुझ में कुछ नहीं है, मैं तो खाली हूं। जब कोई कहे ना आपके पास आकर, जब कोई ऐसा कहे ना कि मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, भक्तों सबसे पहले उसे प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि अपने आप को मूर्ख और अज्ञानी कहने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी है। और यदि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति, चाहे आचार्य पंडित हो, परंतु अपने आप को ज्ञानी कहता है, तो सबसे बड़ा मूर्ख है। दक्ष प्रजापति अपने आप को ज्ञानी कह, न ज्ञान, मैं अज्ञान से नहीं बोल रहा हूं, न च मत्सरात, और मैं द्वेष भाव से भी नहीं बोल रहा हूं, पूरा द्वेष तो भरा हुआ है इसमें, शिवजी के प्रति पूरा द्वेष। और द्वेष का कारण आज तक तो कुछ द्वेष नहीं था, केवल इसके आने से खड़े नहीं हुए द्वेष आ गया। भक्तों ये ऐसा ही होता है कलयुग में, खास करके कोई भक्त होता है, प्रचार करता है, और वैसे भगवान की कृपा से उनकी सुकृति से कोई भक्त बनता है, लेकिन ये सोचता है कि मैं बड़ा हूं, मैंने इसको भक्त बनाया। और फिर कभी कभी वो व्यक्ति अपने शिक्षा गुरु को या उनको प्रणाम नहीं करता है, तो ये बिल्कुल उनसे विरुद्ध हो जाता है, मुझे प्रणाम भी नहीं करता है, मुझे आदर भी नहीं देता है, अरे मैंने इसको भक्त खाक तू भक्त बनाया। मन में सोचता है कि मैंने इसको भक्त बनाया, मैंने किया, अरे तू ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है तो वो कैसे भक्त बनेगा। अभी भी मन में आदर और सत्कार की भावना है, भक्ति नहीं है। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति वैसे तो कह रहे हैं कि मैं द्वेष भाव से नहीं बोल रहा हूं, परंतु पूर्ण द्वेष भरा हुआ है और पूर्ण ज्ञान है, और अब बोलना शुरू कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति, मैं आपको पहले से अवगत कर दूं, दक्ष प्रजापति हमारे भोलेनाथ शिवजी के बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं, और आज भी संसार के कुछ लोग शिवजी के बारे में बहुत बुरा कहते हैं। जो लोग शिव जी के बारे में बुरा कहते हैं वो सबसे बड़े अज्ञानी हैं और सबसे बड़े द्वेषी हैं। यहां तक कुछ लोग राम की कृष्ण की भक्ति करते हैं परंतु शिव जी को आदर नहीं देते हैं। रामायण में भगवान रामचंद्र ने अपने मुख से कहा है, शिव द्रोही मम भगत कहावा, यदि कोई मेरी भक्ति करता है परंतु शिव जी से द्रोह करता है, स नर नार की गति पावा, वह नर नरक में जाएगा यदि शिव जी से द्वेष करेगा। शिव जी के प्रति द्वेष नहीं। संसार में जो लोग शिव जी के प्रति गलत धारणा रखे हैं वो शिव जी के द्वेषी हैं, वे असुर है। मैं यहां पर वास्तव में शिव जी क्या है ये प्रकट करना चाहता हूं भागवत के माध्यम से। दक्ष प्रजापति शिव जी के विषय में अब कहना शुरू कर रहे हैं दसवें श्लोक से। अयम तु लोकपालाना यशोग्नो निरपत्रप सद्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषित। अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रप। सबसे पहले शिवजी के ऊपर लांछन लगाते हुए दक्ष प्रजापति ने कहा अयम ये मेरा दामाद, हाथ उंगली दिखाते हुए है? अयम माने ये निर्देशवाचक शब्द है, निर्देश कर रहे हैं ये बैठा हुआ है, ये मेरा दामाद लोकपाला नाम, ये जितने भी लोकपाल हैं ये सबकी कीर्ति को सबके यश को नष्ट करने वाला है, सबके यश को नाश करने वाला, ये खुद बिगड़ा हुआ है और सबका यश बिगाड़ रहा है। ऐसा कैसे? मान लो दक्ष प्रजापति की बुद्धि से यदि हम सोचे कि मान लो शिव जी ने कुछ गलत काम किया, तो शिव जी ने गलत काम किया तो सबका यश कैसे बिगड़ेगा? अयम तु लोकपाला नाम यशग्न, सभी लोकपालों का यश कैसे नष्ट होगा? हां होता है, कैसे? एक दृष्टि से होता है। कैसे? जैसे मानो हम टैक्सी करके यहां ऊपर आए, यहां पर इस गांव में हम लोग हरिद्वार से टैक्सी करके आए और टैक्सी वाले के साथ कुछ झगड़ा हो गया, और यदि हम समझ बैठे कि यहां के सब टैक्सी वाले ऐसे ही हैं, सोचते ना हमारी बात तो केवल एक टैक्सी वाले के साथ हुई है लेकिन टैक्सी वालों की जितनी बिरादरी है हम सोच बैठते हैं सब लोग ऐसे ही हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता। परंतु जिसमें अज्ञान आ चुका है, जो द्वेषी है उसके मन में ऐसा लगता है। जैसे मान लो यहां पर भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, हरे कृष्ण संस्था में भी बहुत सारे भक्त हैं, और बहुत सारे लोगों में कुछ लोग बेचारे माया के प्रभाव से पतन हो जाता है, कुछ लोग गिर जाते हैं। तो मान लो हजारों हरे कृष्ण भक्तों में से किसी एक का पतन हो गया, कोई एक गिर गया, तो क्या सब लोग बिगड़े हुए हैं? यहां पर कुछ ऐसी घटना हुई होगी आप लोग जानते हैं, तो क्या दक्ष प्रजापति की तरह हम सबको दोष देंगे? अरे दक्ष प्रजापति मूर्ख अज्ञान में आकर द्वेष के कारण वे कह रहे हैं सब लोग ऐसे हैं। हम लोग को मूर्ख नहीं बनना है, जांचना है। हजारों में कोई एक ने मिस्टेक कर दी परंतु दूसरों का लाभ लेना चाहिए। तो ये मैंने दक्ष प्रजापति की ओर से कहा, ये एक ओर से दक्ष प्रजापति पूर्ण गलत है, और दूसरी ओर से यदि दक्ष प्रजापति के शब्दों को वास्तविक रूप से समझे, वैसे देखा जाए मैं यदि अंदर की बात करूं तो दक्ष प्रजापति भी कोई बुरा व्यक्ति नहीं, भगवान का एक पार्षद ही है, लीला करने के लिए आए हैं। यदि इसका सारस्वत अर्थ लिया जाए, सरस्वती दक्ष प्रजापति के मुख के ऊपर बैठी है और कभी भी शिवजी के बारे में गलत नहीं बुलवा सकती है। यदि इसका दूसरा अर्थ लिया जाए, दक्ष प्रजापति ने लीला में अपनी ओर से तो कह दिया कि अयम तो लोकपाला नाम यशग्न, ये शिव सभी लोकपालों का यश नष्ट करने वाला है। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में बहुत सुंदर कहते हैं इसके अर्थ को, बोले बात सही है। भगवान शिव, शिव जी ने सभी लोकपालों के यश को नष्ट कर दिया। कैसे? शिव जी इतने महान हैं, इतने महान हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उनका यश, उनकी कीर्ति इतनी विख्यात हो गई कि सब लोग फीके पड़ गए। ये भी एक अर्थ है। तो सही बात ये है, शिव जी इतने महान हैं, शिव जी का प्रभाव पराक्रम इतना विशाल है, दूसरे जितने भी लोकपाल हैं उनका यश नष्ट हो जाता है, उनकी ख्याति समाप्त हो जाती है, शिव जी की ख्याति बढ़ जाती है। आगे दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर कहते हैं, निरपत्र पर तुम निर्लज्ज हो, ये इसे किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं है, ये निर्लज्ज है। लज्जा न होना एक दोष है, दक्ष प्रजापति की ओर से उनको दोष दिख रहा है, लेकिन सरस्वती जी इसका अर्थ कर रही है, नहीं नहीं ये बात सही है, शिव जी निर्लज्ज हैं, परंतु कैसे? भगवान की भक्ति करने में शिव जी को किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं है, निर्लज्ज, ये भी एक गुण है। देखिए सरस्वती जी बैठी हैं और दक्ष प्रजापति के दोष को कैसे गुण में बदल रही है, अद्भुत श्लोक है सब। इस संसार में हम कुछ लोगों को कहते हैं कि आप लोग हरे कृष्ण में आइए, हरे कृष्ण जपिए, भगवान का नाम लीजिए, तो कहते हैं हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले ठीक नहीं समझेंगे, वो लोग कहेंगे कि ये बस साधु हो गया, भक्त बन गया। संसार में कृष्ण की भक्ति करने की लज्जा आती है लोगों को। हम कहते हैं आप माला जपिए, तो हाथ में माला नहीं जपते हैं, बोले हम लोग मन में लेते हैं, बोले क्यों, बोले लज्जा आती है। हाथ में शराब की बोतल रखने में लज्जा नहीं आती है, हैं? गांजा हाथ में रखने में लज्जा नहीं आती है, और माला जोली हाथ में रखने में लज्जा आती है। कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग संसार से बहुत डरते हैं, संसार वाले क्या कहेंगे, हमारे संसार में, हमारे समाज में तो इसकी भक्ति करते थे और अब कृष्ण की भक्ति करूंगा, संसार के लोग क्या कहेंगे। संसार से डरना नहीं चाहिए। एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, भक्तों ये संसार कैसा है, बोले यदि आप कहीं रास्ते से चलकर जा रहे हो, अपनी दृष्टि को सीधी रखकर जा रहे हो, तो संसार वाले कहेंगे कि ये कितना बिगड़ा हुआ है, अपनी मां बहन के ऊपर नजर डाल रहा है। ये सुनकर आप अपनी दृष्टि को ऊपर रखकर चलोगे तो वही संसार वाले कहेंगे कितना अभिमानी हो गया है, कितना अहंकारी हो गया है, अपनी आंखों को नीचे नहीं करता है। अब ये सुनकर आप अपनी आंखों को नीचे रखकर चलो तो वही संसार वाले कहेंगे नक्की कुछ गलत काम किया है, चोरी या कुछ गलत चीज किया है, इसलिए आंख नीचे। अब सीधा रखो तो भी तकलीफ, ऊपर रखो तो भी तकलीफ, नीचे रखो तो भी तकलीफ। ये दुनिया वालों की सभी बात सुनकर अपनी आंखों को फोड़ दोगे तब यही संसार वाले कहेंगे अपने कर्मों का फल भोगत रहा है साला। ये संसार वाले क्या देते हैं, आप 1000 अच्छे कार्य करो परंतु एक बुरा हो गया ना, संसार वाले आपके अच्छे कार्य को नहीं देखेंगे, बुरे कार्य को पकड़कर बैठ जाएंगे। और ऐसे संसार वालों के लिए भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं जपते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लज्जा नहीं होनी चाहिए। शिव जी निरपत्र, लज्जा नहीं है किसमें? शिव जी को भगवान की भक्ति करने में कोई लज्जा नहीं। कभी देखा शिव जी डर के जा रहे हैं भगवान की भक्ति? नहीं कोई, क्योंकि लज्जा तो बुरे कार्य करने में आनी चाहिए, गलत काम करने में होनी चाहिए। भगवान का नाम तो शान से लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मेरे भक्त को कृष्ण का नाम शान से लेना है, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तिल मात्र भी डरने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करने में कौन सी लज्जा। कुछ लोग डरते हैं और उसमें भी इस कौन में आकर डरना, ये तो बहुत, क्योंकि इस इस्कॉन संस्था के संस्थापक साक्षात अभय हैं। अभय चरण की संस्था में आकर भय होना ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से निर्भय होकर प्रचार करना और भगवान का भजन करना चाहिए। निर्लज्ज निरपत्र पर शिव जी कभी भी नहीं लज्जित होते हैं। फिर आगे कहते हैं सद्वि आचरित परंथा ये नस्तब्धेन दूषित। सज्जनों के आचरण का जो मार्ग है इस घमंडी ने इस तप्त ने दूषित कर डाला। ये दक्ष प्रजापति शिव जी को कह रहे हैं ये घमंडी है ये स्तब्ध है। स्तब्ध शब्द आया है, स्तब्ध का एक अर्थ है घमंडी। शिव जी घमंडी है ये किसने कहा? दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ को। शिव जी जो है सबसे बड़े वैष्णव है और शिव जी को कोई घमंडी कहता है या किसी वैष्णव को कोई घमंडी कहता है तो वह असुर है, आसुरी वृत्ति का है, वह द्वेषी है, वह अज्ञानी है, क्योंकि दक्ष प्रजापति है। परंतु एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा, सरस्वती जी कह रही हैं स्तब्ध माने स्तब्ध वृक्ष इव स्तब्ध हो, वृक्ष को भी स्तब्ध कहा जाता है। दक्ष प्रजापति ने तो स्तब्ध इसलिए कहा क्योंकि ये घमंडी है, परंतु सरस्वती ने सारस्वत अर्थ करते हुए हमारे आचार्यों ने लिखा वास्तव में ये स्तब्ध है लेकिन कैसे? वृक्ष के समान। शिव जी का जीवन कैसा है? वृक्ष के समान, अमानीन मान देन तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना। वृक्ष में एक गुण है जानते हैं क्या? वो सहनशील होता है। दक्ष प्रजापति ने कहा कि स्तब्ध है ये, तो वास्तव में शिव जी सहनशील है, वृक्ष के समान सहनशील। हम भक्तों को शिव जी से ये गुण लेना चाहिए। आज कलयुग में किसी में सहनशीलता नहीं है, तुरंत झगड़ा कर बैठते हैं, पति पत्नी तुरंत डाइवोर्स ले लेते हैं, तुरंत दूर हो जाते हैं, भक्तों में भी झगड़ा होता रहता है, सहनशीलता की कमी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। आप लोग देखते हैं ना ये वृक्ष ये पेड़ और पौधे कितना सहन करते हैं, ठंडी को सहन करते हैं। हम लोग तो ठंड होती है तो कपड़े पहनते हैं है? परंतु वृक्ष को न तो कोई स्वेटर है न कोई शॉल है न चादर है। और उतनी ही वर्षा को सहन करना और उतना ही धूप सहन करना, लेकिन फिर भी वृक्ष अपने मुख से एक बार भी यह नहीं कहता है कि मुझे बचाओ। और उसमें भी कोई व्यक्ति जाता है वृक्ष को पत्थर मारता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी वृक्ष अपना फल देता है, खाओ तुम भले मुझे मारो परंतु मैं तो। भक्त का स्वभाव ऐसा होना चाहिए, कोई कितना भी मारे कोई कुछ भी करे लेकिन प्रेम से प्रकट हो। वृक्ष जेन काटी लेन किछु न बोला है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृक्ष को यदि कोई काट भी डालता है तो उफ तक नहीं करता है। वृक्ष जेन काटी लेह किचु न बोलाए, कोई काट भी डाले तो एक बार भी अपने मुख से उफ न करे। भक्त उसे कहते हैं, कोई यदि भक्त को काट भी डाले उफ तक न बोले, इसे भक्त कहते हैं। आप कहोगे ऐसे भक्त इतिहास में सैकड़ों भक्त हो गए, उनमें से एक है अम्बरीश महाराज। भागवत के नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में अम्बरीश महाराज की कथा, भगवान के परम भक्त सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, जिसका मन निरंतर भगवान के चरणों में लगा रहता था, वांचांसी गुणान वैकुंठ वर्णने, उनकी वाणी निरंतर भगवान का गुणगान करने में लगी रहती थी। करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, उनके हाथ निरंतर भगवान के मंदिर की सेवा करने में लगे रहते थे। श्रुति चकारा चुत सत कथोदय, और वे निरंतर अपने कान को भगवान की कथा सुनने में लगाया करते थे। प्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ है, अपनी नासिका को निरंतर भगवान के नैवेद्य भगवान के चढ़ाए हुए फूल को सूंघने में लगाया करते थे। पादो हरे मंदिर, अपने चरण को सदैव भगवान के मंदिर जाने में लगाते थे। और थे कौन? पूरी दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट राजा, दुनिया का राजा लेकिन भगवान का परम भक्त। दिखा दिया भक्ति सबसे बड़ा धनी भी कर सकता है और सबसे छोटा गरीब भी भक्ति कर सकता है। भक्तों, भक्ति करने में किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे पैसे आएंगे फिर भक्ति करेंगे, नहीं, भक्ति पैसों पर डिपेंड नहीं है, भक्ति कोई भी कर सकता है। रूप गोस्वामी ने पद्यावली में लिखा है, व्याधस्य चरणम, एक बहुत बड़ा शिकारी था, नारद मुनि ने उसको भक्त बना दिया, वाल्मीकि बन गया, बताइए उसका क्या आचरण था। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी, 5 साल में भगवान को प्राप्त कर लिया। विद्या गजेंद्र का, बताइए वह भागवत के 8वें स्कंद का हाथी गजेंद्र कौन सी कॉलेज में पढ़ने गया था, लेकिन फिर भी भगवान को पा लिया। कुब्जा किम नाम रूप अधिकम, कुब्जा में कौन सा बड़ा रूप था, लेकिन पा गई कृष्ण को। किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था, लेकिन द्वारका देश प्राप्त हो गए। यदुपते उग्रस्य किम पौरुषम, उस यदुपति उग्रसेन में क्या कौन सा बड़ा पौरुष था, लेकिन भगवान कृष्ण मिल गए। सार ये है भक्तो, भक्त्या तुष्टति केवलम, नच गुणे भक्ति प्रियो माधव। ये हमारे माधव कृष्ण मात्र भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वे गुण नहीं देखते हैं। भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए उनके प्रति। और भक्ति करने के लिए सहनशीलता, शिवजी कैसे हैं, वृक्ष के समान सहनशील, कोई काट भी दे फिर भी कुछ ना बोले। यहां तो भक्त की कोई कुछ निंदा भी कर देता है तो क्रोधित हो जाता है, जो क्रोधित हो जाता है वो भक्त नहीं होता है। हाँ, भक्त क्रोधित होते हैं, किस पर, अपने शिष्य पर। एक गुरु को अधिकार है क्रोधी होने का, किस पर, अपने शिष्य पर। जो शिष्य अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित है उस पर क्रोधित हो सकता है, परंतु दुनिया में सबके ऊपर क्रोधित होना ये गुरु का अधिकार नहीं है, इसे भक्त का भक्त नहीं कहा जाता है। तो शिव जी में यह गुण है, स्तब्धेन, वृक्ष के समान स्तब्ध, ये गुण शिव जी में है। आगे कहते हैं, येष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितरग्रही, पाणिं विप्राग्नि मुखत सावित्राईव साधुव। येष मे शिष्यतां, दक्ष प्रजापति अब क्रोधित होकर कह रहा है ये मेरा शिष्य है। तब तो सबके मन में प्रश्न हो जाएगा, सीधा सीधा कह रहा है येष मे शिष्यतां प्राप्त, ये मेरा शिष्य है। तब तुरंत एक आचार्य ने प्रश्न उठाया, ननु साक्षात ब्रह्म पुरुषत्वेन तव तुल्यत्वान ज्ञान पूर्णत्वा कथम एतस्य तव शिष्यत्वम्। शिवजी और दक्ष प्रजापति दोनों एक पिता के पुत्र हैं, दोनों के पास समान ज्ञान है, तब शिवजी दक्ष प्रजापति के शिष्य कैसे हो सकते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो माइक हाथ में लेकर बोल रहा है कि येष मे शिष्यतां प्राप्त, ये मेरा शिष्य है और मेरा आदर नहीं किया, ये भाव ये है। तो शिवजी दक्ष प्रजापति के शिष्य कब बन गए? मान लो दक्ष प्रजापति को कोई खड़ा होकर कहे, दक्ष प्रजापति जी आप क्रोध में आकर बहुत कुछ आगे आगे बोल रहे हो, आप कह रहे हो शिव जी आपके शिष्य हैं, कब दीक्षा ली आपसे, ये शिव जी आपके शिष्य कैसे हैं? तब दक्ष प्रजापति कहते हैं, यन्मे दुहित अग्रहित, ये मेरा शिष्य इसलिए है क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह मैंने इसके साथ कराया है, मेरा दामाद है। यहां पर एक सिद्धांत स्थापित होता है, दामाद और ससुर का जो संबंध है गुरु शिष्य का होता है। ससुर जो है दामाद का गुरु होता है। अमित प्रभु, मुझे भी कल ही पता चला। एक आचार्य ने लिखा है, वंशीधर जी ने, शिपा श्रीधर स्वामी की टीका में वंशीधर जी ने लिखा है, अन्वियाताम महावैरगस्वे राजन गुरु ध्रुतम इति सिमंतक उपाख्याने। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जो ससुर हैं दामाद के गुरु के बराबर होते हैं, इसलिए दामाद को अपने ससुर को गुरु समझना चाहिए। और आज के दामाद अपना नौकर बनाकर बैठे हैं, ससुर के घर पर जाते हैं, पांव पर पांव चढ़ाकर बैठते हैं, चाय लाइए, ये लाइए, वो लाइए, इतना लाइए, उतना लाइए। यहां पर पता नहीं ऐसा होता होगा कि नहीं, परंतु शास्त्र कहता है ससुर को गुरु समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ससुर जो है पिता के समान होता है। यहां पर तो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में एक बात थोड़ी खटक रही है कि जो पुत्री का पिता होता है वो सदैव बेचारा झुका हुआ होता है दोनों हाथ जोड़कर, परंतु वास्तव में कन्या का जो पिता होता है उसे तो सीना तान कर खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वह है कन्यादान, सबसे बड़ा दान है। आज तो किसी के घर पर पुत्री का जन्म होता है तो बेचारा दुखी हो जाता है, लड़की का जन्म हुआ, लड़का नहीं हुआ। भले जिसके घर पर लड़की का जन्म होता है ना, वो भगवान को आधा तो ऐसे ही प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में यह अवसर आता है। कौन सा अवसर? सबसे बड़ा दान देने का अवसर, और वो है कन्यादान। कन्यादान कर सकता है, और भक्तों दान देने वाला सबसे बड़ा माना गया है। दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है, जैसे मैं ये दान देना चाहता हूं तो दान देने वाले का हाथ ऊपर और लेने वाले का नीचे होगा, तो वास्तव में देखा जाए देने वाला बड़ा है, देने वाला गुरु है। दामाद को अपने ससुर को गुरु समझना चाहिए, गुरु का संबंध है। तो येष में शिष्यताम प्राप्त, यन में दुहित तु अग्रहित। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी कन्या का विवाह इनके साथ कराया है। पाणिम विप्र अग्नि मुखत, और अग्नि के सामने इसने मेरी पुत्री का हाथ, पाणि माने हाथ, इसने मेरी पुत्री का हाथ पकड़ा है। होता है ना आप लोगों में ऐसा होता है, जब विवाह होता है तो अग्नि के सामने हाथ के ऊपर हाथ, वो जो कंकुपत्री बनाते हैं उसमें भी हाथ के ऊपर हाथ। कभी मन में प्रश्न हुआ कि विवाह के दिन पति पत्नी का हाथ क्यों मिलाया जाता है? जिसे कहते हैं पाणी ग्रह संस्कार। बहुत सारे संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, नामकरण संस्कार, पाणी ग्रह संस्कार। एक बार किसी ने मुझे पूछा था, प्रभु जी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि विवाह के दिन पति पत्नी का हाथ पकड़ाया जाता है, हाथ मिलाया जाता है, पाणी ग्रह संस्कार किया जाता है, ये क्यों? बोले बिल्कुल सिंपल बात है, सरल बात है। मैंने इतना ही कहा, आपने कुश्ती को देखा है? कुश्ती अखाड़े में जब लोग कुश्ती लड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप लोग टीवी वाले हो तो टीवी में WWF कभी देखा है? सबसे पहले क्या करते हैं? अच्छा, आपने बॉक्सिंग वालों को देखा है, एक दूसरों को सबसे पहले क्या करते हैं? ये कुश्ती वाले, WWF वाले या बॉक्सिंग वाले बहुत झगड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हाथ मिलाते हैं। वैसे अब जीवन भर झगड़ा करना है, पहले दिन हाथ मिला लो, पाणी ग्रह संस्कार। तो इस प्रकार ये शिव ने, इसने मेरी पुत्री का पानी ग्रह किया है, हाथ पकड़ा है अग्नि मुखत अग्नि के सामने, और मेरी फूल जैसी मेरी पुत्री, सब लोग अपनी कन्या की प्रशंसा करते ही हैं, ये दक्ष प्रजापति भी करने लगे। सावित्रा इव साधुवत, ये मेरी पुत्री ही सावित्री के समान, सती सावित्री देवी सावित्री के समान साधु स्वभाव वाली, लेकिन मैंने इसका विवाह इस ऐसे व्यक्ति के साथ, इस नीच के साथ कर दिया। दक्ष प्रजापति, सावित्री जैसी मेरी कन्या, आपने कभी सावित्री की कथा सुनी? बहुत सुंदर चरित्र है सती सावित्री। मद्र देश में परम धर्मात्मा अश्वपति नाम के एक राजा थे, और उन्होंने संतान की कामना से 18 वर्षों तक देवी सावित्री की आराधना की। सावित्री देवी देवताओं में भी एक है, 33 करोड़ देवी देवताओं में भी एक देवी का नाम सावित्री देवी है। सावित्री देवी की 18 वर्ष तक आराधना की, और सावित्री देवी की कृपा से इस राजा अश्वपति को एक कन्या की प्राप्ति हुई। बहुत सुंदर दिखने में, गुणवान सुशील स्वभाव, इसलिए इस राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा, सावित्री देवी। और ये सावित्री देवी गुणों में देवी गुण थे, उनमें देवी के समान, इसलिए राजा जिस किसी को भी इसके विवाह की बात करता, विवाह करने वाला डर जाता, यदि मैंने सावित्री देवी के साथ विवाह किया और कुछ अपराध कर दिया और इस देवी ने श्राप दे दिया तो मर जाऊंगा। अब सावित्री के भय से लोग इसके साथ विवाह नहीं करते थे। तब राजा अश्वपति थक गए, बोले बेटा अब मैं तो बहुत प्रयास किया, मुझे तो तेरे लायक कोई वर नहीं मिला, अब तू अपने से एक वर ढूंढ ले कहीं भी। एक बार देवी सावित्री जंगल में विचरण कर रही थी और अपने वर, अपने लायक उन्होंने वर को चुन लिया और कह दिया कि 10 दिन के बाद मैं आपसे विवाह करूंगी। सावित्री अपने पिता के पास आई और कहा, पिताजी, जिस समय सावित्री यह बात अपने पिता को बता रही थी उस समय नारद जी वहां पर बैठे थे। नारद जी और अपने पिता अश्वपति को सावित्री ने कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा से मैंने मेरे पति को चुन लिया है। बोले बेटा किसको चुना है? बोले बहुत समय पहले एक राजा थे जिसका नाम था धूमत सेन, और ये राजा किसी राजा के साथ युद्ध किए और कुछ कारणवश किसी ने इस राजा की आंखों को फोड़ दिया, और आंख को फोड़ने के कारण उसे राजपद से हटाया गया। इसलिए वो राजा अपने पुत्र सत्यवान को लेकर वन वन में भटक रहा है। मैंने उस राजा धूमत सेन के पुत्र सत्यवान के साथ मेरा विवाह तय किया है, 10 दिन के बाद मैं उसके साथ विवाह करने वाली हूं। तब नारद जी ने अपने योग बल से सब कुछ देख लिया और नारद जी ने सावित्री को कहा कि बेटा तू और किसी को चुन ले, सत्यवान के साथ विवाह मत कर। बोले क्यों? बोले मैंने उसका भविष्य देख लिया है, सत्यवान 1 साल के बाद मरने वाला है, उसके जीवन में 1 ही वर्ष लिखा है। सावित्री ने कहा कि मैंने तो अब मन से उनको पति मान लिया है, अब कुछ भी हो जाए मैं उसे त्याग नहीं सकती हूं। कहां देवी सावित्री और कहां आज की नारी, बेचारे पति देव साड़ी लेकर नहीं आते हैं तो तलाक कर देते हैं, थोड़ा बहुत असमंजस हो जाता है तो छोड़ देते हैं एक दूसरों को। देवी सावित्री को आदर्श बनाना चाहिए। बोले मन से मैं वर चुकी हूं, मन से मान चुकी हूं, अब वो मेरे पति हो चुके हैं, अब तो मैं उसे छोड़ूंगी तो बहुत बड़ा कलंक लगेगा, अब मैं विवाह करके रहूंगी। 10 दिन के बाद देवी सावित्री ने सत्यवान के साथ विवाह किया। विवाह करके दोनों गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। 1 दिन की बात, 1 साल समाप्त हुआ, सावित्री को यह बात पता थी, इसलिए उस दिन सावित्री अपने पति के साथ ही रही, दोनों जंगल में थे। और उस समय साक्षात यमराज जी आए और सावित्री के पति को मारकर लेकर जा रहे थे। सावित्री ने देखा कि यमराज जी मेरे पति को मारकर लेकर जा रहे थे, सावित्री उनके पीछे पीछे चली। यमराज जी ने कहा कि भाई तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो? सावित्री ने कहा कि एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति के चरण कमलों के चिन्हों पर चले, मेरे पति जहां जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगी। बोले ये मर चुके हैं, बोले तो क्या हुआ, मैं साथ में जाऊंगी। यमराज जी ने बहुत बहुत मना किया परंतु सावित्री मानी नहीं। तब यमराज जी सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर प्रसन्न हो गए, कहा देवी तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन अपने पति को जीवित करने का वरदान मत मांगना, इसके अलावा कुछ भी मांग लो। यमराज जी ने यह शर्त रखी, लेकिन सावित्री तो आखिर सावित्री थी, बुद्धिमान थी। यमराज जी ने कहा कि अपने पति को जीवित करने के अलावा कुछ भी मांग लो, मांगो। तब सावित्री ने कहा ठीक है, आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो सबसे पहला वरदान दो, मेरे ससुर की आंख वापस आ जाए। मुझे नहीं लगता है कलयुग में ऐसी कोई बहू होगी जो अपने ससुर के बारे में इतना भला सोचती होगी। वो चाहे मरे तड़पे कुछ भी करे, मेरा अच्छा होना चाहिए, आज की बहू तो ये सोचती है। लेकिन सावित्री ने अपने लिए कुछ न मांगकर अपने ससुर के लिए मांगा, इसे कहते हैं बहू, इसे कहते हैं कन्या। यमराज जी इसको सुनकर प्रसन्न हो गए, वाह इसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने ससुर के लिए आंख मांगी, एक काम करो दूसरा वर मांग लो, लेकिन पति को जीवित करने का तो मैं दूंगा ही नहीं। सावित्री ने कहा तो ठीक है, आपको दूसरा वरदान देना है तो मेरे ससुर का जो राज्य खो गया है, हार गए हैं, वह राज्य उनके पास वापस आ जाए, ऐसा वरदान दो। दूसरा भी अपने ससुर के लिए मांगा, यमराज जी प्रसन्न हो गए, बोले तीसरा वरदान मांगो। तब सावित्री इतनी बुद्धिमान थी, यमराज जी को कहा ठीक है मुझे मेरे पति जीवित हो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जीवन में और किसी भी पति के साथ विवाह न करूं। भगवान यमराज जी प्रसन्न हो गए, बोले चौथा मांगो। देखिए आप ध्यान से सुनिए, तीसरा मांगा कि मैं किसी भी पुरुष के साथ विवाह न करूं, बोले चौथा मांगो। तब यमराज ने जब कहा चौथा मांगो तो सावित्री ने कहा एक काम करो मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दो। बोले वाह प्रसन्न हो गया, पांचवा मांगो, पति को जीवित करना नहीं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मुझे 5वां वरदान दो कि मेरे 100 पुत्र की परवरिश उनके पिता के द्वारा हो। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, सावित्री ने ऐसा घुमा फिराकर यमराज को चक्कर में डाल दिया, यमराज को मजबूर होकर उनके पति को जीवित करना पड़ा, क्योंकि सावित्री पहले मान चुकी थी। सावित्री ने पहले कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा किसी अन्य के साथ विवाह न हो, और फिर मांगा 100 पुत्र हो, किसी और पति के साथ विवाह न होकर 100 पुत्र कहां से आएंगे, ऊपर से तो टपकेंगे नहीं, और ऊपर से यह मांग लिया कि वो पुत्र की परवरिश उनके पिता के द्वारा हो। तब तो यमराज जी को कैसे भी करके सावित्री के पति सत्यवान को जीवित करना पड़ा। सावित्री अपने जीवित पति को लेकर वापस घर पर चली गई, इसे कहते हैं पतिव्रता नारी, इसे कहते हैं नारी। दक्ष प्रजापति याद करके कह रहे हैं मेरी पुत्री, मेरी कन्या सती सावित्री के समान है, और सावित्री का हाथ इनके हाथों में दिया है। ग्रहित्वा मृग शावाक्षा, मेरी पुत्री सावित्री, सावित्री नहीं सती, ग्रहित्वा मृग शावाक्षा, मेरी पुत्री की आंखें मृग के समान, मृग के छोटे छोटे बच्चों के समान इतनी सुंदर, और ये पानी मरकट लोचन, ये बंदर जैसी आंखों वाला। दक्ष प्रजापति क्रोध में आकर, मेरी बेटी की आंखें हिरणी के बच्चे जैसी, और ये मरकट लोचन ये बंदर की आंखों जैसा। तब सरस्वती जी ने अर्थ किया है, बंदर की आंख कह रहे हो, वास्तव में शिव जी की आंख बंदर जैसी है, लेकिन बंदर की आंखों में कृपा होती है अनेकों। बंदर की आंख कभी शांत नहीं होती, कभी यहां देखते हैं, कभी यहां, कभी यहां, यहां। भोलेनाथ देखते रहते हैं किसके ऊपर कृपा करूं, किसके ऊपर, कृपालु है। मरकटान मरकट तुल्यान न कामी न अपी, यहां पर मरकट बंदर जैसी आंख अर्थात दिखने में बंदर जैसी आंख, ऐसा नहीं बंदर में जैसे बंदर की आंखों में काम वासना होती है, ऐसे नहीं, दिखने में बंदर जैसी सुंदर आंखें हैं। तो दक्ष प्रजापति कह रहा है मरकट लोचन प्रत्युत्थान अभिवाद अरे वाचापि अकृत न उचितम। और ये मैं इस सभा में आया, सब लोग खड़े हुए और ये अपने स्थान पर खड़ा तो नहीं हुआ, परंतु कम से कम अपने मुख से अभिवादन भी नहीं किया कि ससुर जी कैसे हो, अच्छे हो, आपकी तबीयत पानी कैसे है, ठीक है ना, अभिवाद। अरे चलो जगह पर खड़ा नहीं हुआ, कम से कम इस शिव को अपने मुख से अभिवादन तो करना था, आदर तो करना था। इस संसार में जो भौतिक लोग होते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, वो बस यही आशा करते हैं कि लोग हमें पूछे कि देखो शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं, वाह वाह, बोलते रहो, गाते रहो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे के पक्ष वाले हैं, और जो गा रहे हैं वो शिव जी के पक्ष वाले हैं। आपको किसके पक्ष में रहना है, है? शिव जी के पक्ष में।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
सभी लोग प्रेम से नाचिए गाइए
हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
सभी लोग प्रेम से नाचिए
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे
हरे हरे रामा
बन बन गाय चरावत डोले
बन बन
बन गाय चरावत डोले,
बन बन गाय चरावत डोले।
कारी ओढ़े का मरिया मोहे काहे को हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान कर रहे हैं, परंतु हम लोग शिव जी का अपमान सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो सरस्वती देवी के मुख से शिव जी का प्रशंसा सुन रहे हैं, शिव जी के गुण सुन रहे हैं। कहां मृग लोचनी मेरी कन्या और कहां मरकट लोचन ये शिव। मुझे प्रणाम तो नहीं किया, परंतु मेरे आने पर कम से कम मुख से आदर भी नहीं किया, कम से कम एक बार यह भी नहीं कहा तुम कैसे हो, पिताजी मजे में हो। वास्तव में जब कोई व्यक्ति भजन करता है, भक्ति में लगता है, तो उनके जीवन में यह प्रथम दुर्घटना आती है। क्या? ये स्वजन जो है वे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भक्त का मन भगवान में लगा रहता है, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। संसार के लोग सोचते हैं कि ये हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं, और यदि हम लोग संसार की ओर ध्यान दे भी दिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। परंतु ज्ञान के कारण लोग इस बात को समझ नहीं सकते हैं। आगे कहते हैं, लुप्त क्रियाय अशुचे मानिने भिन्न सेतवे। ये मेरे दामाद ने मेरा दामाद बनकर बैठा है, परंतु ये अभिमानी है। अरे अभिमानी तू है कि ये है? वास्तव में जिसको अभिमान चढ़ जाता है उसे पूरी दुनिया अभिमानी लगती है। और एक सत्य बात कहूं, पवित्र कीर्ति परम पवित्र जगत को पवित्र करने वाले शिव में यह दोष देख रहा है दक्ष प्रजापति। शिव जी में दोष नहीं है भक्तों, दक्ष प्रजापति में दोष है। इस संसार में जब किसी दूसरों में दोष देखने लगते हैं, जब दूसरों में दोष दिखता है, तब समझ लेना चाहिए वह दोष हम में है, हम में। यदि हम में दोष है तो दूसरों में दिखते हैं, और यदि हम में दोष नहीं है तो दूसरों में दोष होकर भी हमें दिखेंगे नहीं। पीला चश्मा पहन लो जगत पीला दिखेगा, लाल चश्मा पहन लो जगत लाल दिखेगा। जगत लाल नहीं है, जगत पीला नहीं, आपकी आंखों पर लगा हुआ चश्मा पीला है, आपकी आंखों पर लगा हुआ चश्मा लाल है। जगत को बदलने की जरूरत नहीं भक्तों, हमें बदलने की जरूरत है। दोष हम में है, इसलिए दूसरों में दोष देखना नहीं चाहिए, और यदि दूसरों में दोष देख भी जाए तो उसका वर्णन नहीं होना चाहिए, दबा देना चाहिए। इसने सत्पुरुषों की जितनी भी पवित्र क्रिया है उसका लोप कर दिया। भिन्न सेतवे, इसने एक भिन्न सेतु बांध दिया। भक्तों, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में धर्म की उपमा सेतु के साथ की गई है। सेतु, जैसे धर्म को सेतु क्यों कहा गया, श्लोक में 13वें श्लोक में यह बात आई है, सेतवे सेतु अभिन्न सेतु। यह जगत, यह संसार एक सागर के समान है, और संसार को पार करना, वैसे आप चाहोगे तैर के मैं सागर को पार करूं, बिल्कुल मुश्किल। गोस्वामी जी कहते हैं गंगा नदी के प्रवाह में यदि इस पार से भी उस पार जाना है तो बहुत मुश्किल है। अति अपार चरितवर, मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, सही मम सुगम चलत मम भाई। अति अपार चरितवर, कितना भी बड़ा हाथी भी यदि हर की पौड़ी पर इस किनारे से उस किनारे पर जाने का प्रयास करे, जा नहीं सकता है। चींटी की तो बात ही क्या की जाए, बड़ा पशु बड़ा व्यक्ति भी नहीं जा सकता है। परंतु अति अपार चरितवर, जे नृप सेतु कराही, कहू भी पर कहू परम लघु, बिन श्रम पार ही जाई। परंतु उस नदी के ऊपर एक सेतु बना दिया जाए, हाथी की बात दूर रही, एक चींटी भी उसे पार कर सकती है। ऐसे भक्तों, संसार सागर को पार करना बहुत मुश्किल है, दुरू है, दुरत्यय है, परंतु इसके ऊपर यदि सेतु बना दिया जाए तो उसे आसानी से पार कर सकते हैं। भक्तों, संसार सागर को पार करने के लिए सेतु क्या है? धर्म। धर्म को सेतु कहा गया है, धर्म के द्वारा ही। और धर्म का अर्थ क्या होता है? भागवत में 6 प्रश्न पूछे गए। प्रथम प्रश्न, कह धर्म, धर्म क्या है? भक्तों, धर्म तो बहुत प्रकार के हैं। कुछ लोग धर्म को कर्तव्य समझते हैं, माता के प्रति कर्तव्य मातृधर्म, पिता के प्रति पितृधर्म, देश धर्म समाज धर्म, ये सब धर्म तो बहुत छोटे धर्म हैं। सवे पुंसा परो धर्म, सबसे परम सबसे बड़ा धर्म क्या है? यतोर भक्ति अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना सबसे बड़ा धर्म है। क्यों आप लोग कहोगे? क्योंकि आप तो कृष्ण के भक्त हो, तो कहो। कुछ लोग मातृधर्म पितृधर्म देश धर्म समाज धर्म, भक्तों ये जितने भी धर्म हम लोग मानते हैं ना, ये सारे धर्म शरीर से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं मां का भक्त हूं, लेकिन ये इस जन्म में तेरी मां है, दूसरे जन्म में कोई दूसरी मां होगी, धर्म बदल गया। और जो बदलता है उसे सनातन धर्म नहीं कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं देश सेवा करना सबसे बड़ा धर्म, आज भारत में जन्म कल पाकिस्तान में जन्म होगा, ये सनातन धर्म नहीं है। तो ये जितने भी धर्म हैं शरीर से जुड़े हुए हैं, और हम लोग ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए आत्मा का जो धर्म होगा, आत्मा का जो कर्तव्य होगा, वही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मा क्या है भक्तों? ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मन सष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। ये अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव हैं, मम एव अंश, मेरे ही अंश है, अन्य किसी के नहीं। कृष्ण परमात्मा है, और परमात्मा के अंश को आत्मा कहा जाता है। हम लोग सब आत्मा, उस परमात्मा कृष्ण के अंश है। और यह आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का सबसे बड़ा धर्म, सबसे मूल धर्म और सबसे परम धर्म परमात्मा की सेवा करना है, परमात्मा को प्रेम करना है। और इसी को कहते हैं सनातन धर्म। इस बात को छोड़कर कोई कुछ भी बोले सब झूठ है, सब झूठ गलत। सत्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान राम की भक्ति, यही एकमात्र सत्य, बाकी सब गलत। क्यों? क्योंकि यही है आत्मा का परम धर्म। शिव जी को पूछा गया, हम लोग शिव जी के स्थान में बैठे हैं ना, बेलेश्वर महादेव के चरणों में बैठे हैं। बेलेश्वर महादेव को एक बार पार्वती ने पूछा, प्रभु संसार के लोग होम हवन याग यज्ञ करते हैं और सब लोग कहते हैं ये सत्य है, फलाने सत्य, ये सत्य। वास्तव में इस जगत में सत्य क्या है? कुछ लोग अपने आप को सत्य मानते हैं, मैं भगवान, अहम ईश्वर, त्वम ईश्वर, सर्व सर्व खलुमिदम ईश्वरम ब्रह्मन। पार्वती ने पूछा, प्रभु इस संसार में सत्य क्या है? तब शिव जी ने कहा कि हे भवानी, हे उमा, उमा कहूं अनुभव में उपन अपना, हे उमा, हे पार्वती, मैं मेरे पूरे जीवन का अनुभव तुम्हें कहने जा रहा हूं, मेरे जीवन का अनुभव सुन। उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में हरि की, राम की और कृष्ण की भक्ति करना, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब स्वप्न के समान है। सत्य एकमात्र भगवान की भक्ति, और इसी को कहते हैं धर्म, इसी को कहते हैं सेतु। सेतु भगवान को प्राप्त करने के लिए जो धर्म है, सेतु। परंतु दक्ष प्रजापति कह रहे हैं भिन्न सेतु, इसने कुछ अलग ही सेतु बांध दिया, इसने कुछ अलग धर्म ही उत्पन्न कर दिया है। अरे वही तो सीधे धर्मों में है। शिव जी जो धर्म कर रहे हैं वही तो सबसे सर्वोच्च धर्म है, सर्वोच्च। शिव जी क्या करते हैं? त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, भगवत कथा सुनना, भगवान का नाम जपना, भगवत कथा बोलना, सबसे श्रेष्ठ धर्म में लगे हैं। परंतु जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है ना भक्तों, इस प्रसंग के प्रारंभ में एक आचार्य लिखते हैं, जिस व्यक्ति का पतन और जिसकी मृत्यु करीब आने वाली है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि बिगड़ती है। दक्ष प्रजापति की मौत बहुत करीब आने वाली है और जब मृत्यु आती है तो सबसे पहले वह किसी व्यक्ति के बुद्धि के ऊपर सवार हो जाती है। क्या भगवान श्री रामचंद्र, चाणक्य पंडित ने लिखा है नीति शास्त्र में, क्या भगवान श्री रामचंद्र को नहीं पता था कि मैं उस मृग का पीछा करूंगा रावण सीता का हरण करके चला जाएगा? राम को पता नहीं था कि वह माया मृग है, वह माया का बना हुआ मृग। अरे सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट, सबके हृदय में बैठे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबके बारे में जानने वाले भगवान उस माया मृग को जानते नहीं थे? जानते थे, भगवान राम उस माया मृग को जानते थे। परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश काल नजदीक आता है ना, क्या रावण में बुद्धि नहीं थी? बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण, रावण के पास जो ज्ञान था लगभग किसी के पास होगा। परंतु विनाश काल करीब आने से बुद्धि विपरीत हो गई। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति की बुद्धि बिगड़ी है और बिगड़ी हुई बुद्धि से शिव जी का अपमान कर रहा है। भिन्न सेतवे अनिच्छन अपि अदाम, मुझे तो मेरी बेटी का विवाह इसके साथ करना ही नहीं था। अनिच्छन, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं मेरी बेटी का विवाह इस लफंग के साथ कराऊं। परंतु बालाम शुद्राय इव उशिरम गिराम, परंतु नहीं, जैसे शूद्र का अधिकार वेदों के ऊपर नहीं होता है, जैसे मूर्ख का अधिकार वेदों के ऊपर नहीं, वैसे इसका विवाह, इसका अधिकार मेरी पुत्री पर है ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रेतवासेषु घोरेषु, लेकिन फिर भी मैंने विवाह किया। मैंने सोचा कि विवाह करके ये सुधर जाएगा। मैंने सोचा था विवाह होने के बाद ये सुधर जाएगा, लेकिन प्रेतवासेषु घोरेषु, ये प्रेतों के साथ रहता है, ये घोर प्रेतों के साथ रहता है। वास्तव में शिवजी प्रेतों के साथ रहते हैं, ये सत्य बात है। चलो इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा विचार करें। शास्त्र में तो एक चीज कही गई है कि सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कह दिया असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। एक वैष्णव उसे कहा जाता है जो असत संग से दूर रहता है। सही बात है, भगवान ने कहा। और शिव जी तो सबसे बड़े वैष्णव है, तो ये सबसे बड़े वैष्णव होकर असत संग क्यों कर रहे हैं, प्रेतों का संग क्यों करते हैं? सबसे बड़े वैष्णव होकर प्रेतों के साथ क्यों रहते हैं, ये प्रश्न हो रहा है। क्या शिवजी वैष्णव नहीं है? और यदि वैष्णव है तो असत संग क्यों कर रहे हैं? ये दक्ष प्रजापति कह रहे हैं प्रेत वासेषु, प्रेतों के साथ रहता है। परंतु भक्तों, एक आचार्य ने अपनी टीका में बहुत सुंदर लिखा है, वास्तव में शिवजी प्रेतों का संग करते हैं, यह सत्य बात है, लेकिन ये जितने भी प्रेत हैं, ये प्रेत, उन्होंने लिखा है अपनी टीका में, असुचि कर्म करना, ये प्रेत जो हैं अपवित्र कार्य करते हैं, अपवित्र अवस्था में रहते हैं। असुचि कर्म करनात् असुचित्वम उक्तम, ये प्रेत अपवित्र अवस्था में रहते हैं इसलिए उसे अपवित्र कहा जाता है। परंतु नतु द्वेष आदि इतिहा प्रेत अवसित, परंतु ये प्रेत कभी भी भगवान से और भगवान के भक्तों से द्वेष नहीं करते हैं। अशुचि कर्म करनात्, अशुचि कर्म करने के कारण इसे प्रेत कहा जाता है, इसे अपवित्र कहा जाता है। परंतु ये प्रेत लोग, ये जो प्रेत हैं, ये भगवान से और भगवान के भक्तों से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करते हैं। और इस संसार में मनुष्य बनकर भी लोग भगवान से और भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। अब आप मुझे ये बात बताइए कि एक प्रेत है, ये प्रेत है, और एक मनुष्य है, ये प्रेत भगवान की ईर्ष्या नहीं करता है, वैष्णव भक्तों की भी ईर्ष्या नहीं करता है, और ये मनुष्य है जो भगवान की भी ईर्ष्या करता है और वैष्णव की भी ईर्ष्या करता है, तो आप किसके साथ रहना पसंद करोगे? बुद्धिमान व्यक्ति किसका संग करेगा? प्रेत का। शिवजी इसलिए प्रेतों का संग कर रहे हैं, और उन प्रेतों का संग कर रहे हैं जो भगवान और भक्तों से ईर्ष्या नहीं कर। लेकिन फिर भी मन में एक प्रश्न बना रहता है कि कोई मनुष्य मिला नहीं, प्रेत ही मिले। फिर भी एक प्रश्न, शिवजी को प्रेत ही मिलेंगे? ये गुण शिवजी ने मनुष्यों में नहीं देखा? नहीं, शिवजी के हृदय में करुणा है। शिवजी को प्रणाम करते समय हम क्या बोलते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार है भक्तों, करुणा के सागर है। शिवजी ने देखा कि संसार के लोग शहरों में प्रचार करते हैं, विदेश में प्रचार करते हैं और लोगों को भक्त बनाते हैं। कई लोग हैं जो विदेशों में प्रचार करते हैं, भक्त बनाते हैं, और उससे जो थोड़े नरम हृदय वाले हैं वो भारत में अन्य अन्य शहरों में प्रचार करते हैं, भक्त बनाते हैं, और उससे भी जो नम्र हृदय वाले हैं वो गांव में जा जाकर ग्राम जन्य निस्तारिणे गांव के भक्तों को, गांव के लोगों को भक्त बनाते हैं। परंतु शिव जी तो उससे भी करुणामयी है। शिव जी ने देखा कि संसार में प्रचार करने वाले लोग बहुत हैं और मनुष्य को प्रचार करते हैं, लेकिन प्रेतों को कौन प्रचार कर रहा है। शिव जी की इच्छा है कि ये प्रेत लोग एक ना एक दिन भक्त बन जाएंगे, मैं ये प्रेतों के साथ रहूंगा और सबको भक्त बना दूंगा, इसलिए शिव जी प्रेतों के साथ रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शिव जी उन प्रेतों के साथ नहीं रहते हैं जो भगवान से और भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। स्वभाव से जो भले स्वभाव से बिचारे स्वभाव से मजबूर है, लेकिन शिव जी उन प्रेतों को एक ना एक दिन, उनका उद्देश्य है मैं भक्त बना दूंगा। तो इस प्रकार ये प्रेतों के साथ रहना, इसमें भी शिव जी की करुणा है। दक्ष प्रजापति तो दोष गिना रहा है, लेकिन शिव जी की अद्भुत कृपा करुणा प्रेतों के साथ रहकर उनको सुधारने का प्रयास। वास्तव में जो महात्मा होते हैं ना, वो बहुत उच्च स्थिति में होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं बहुत उच्च स्थिति में होते हैं, लेकिन कभी कभी उसे प्रचार करने के लिए नीचे की स्थिति में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले को ऊपर उठाने के लिए है? कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए निकालने वाले को कुएं में जाना पड़ता है। प्रेतों का उद्धार करने के लिए शिव जी को प्रेतों के पास जाना पड़ता है, इसलिए शिव जी प्रेतों का संग करते हैं। ये शिव जी की करुणा है। प्रेतवासेषु घोरेषु, घोर स्वभाव वालों के साथ। प्रेतेर भूत गणे वृत, और भूत गणों के साथ रहते हैं। अटति उन्मत्त वत नग्न, उन्मत्त, उन्मत्त माने पागलों के समान। ये जो है मेरा दामाद पागलों के समान रहता है। दक्ष प्रजापति से दोष कहते हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा गुण है। भक्ति करते करते भगवान के प्रेम में पागल हो जाना, उन्मत्त का अर्थ होता है पागल। भगवान के प्रेम में पागल हो जाना ये सबसे बड़ी भक्ति है। भक्तों समय हो गया है और आप लोगों को भी देरी होती होगी, तो मैं यहीं पर विराम दे देता हूं। 4:45 हो चुके हैं। दक्ष प्रजापति को शिव जी के गुणगान करने दीजिए, हम कल से इस गुणगान को आगे बढ़ाएंगे। और बस अब कुछ ही, बस 2 श्लोक के बाद दक्ष प्रजापति क्रोधित होंगे और सभा को छोड़कर चले जाएंगे, और फिर एक दूसरे को शापाशापी शुरू होगी। शिव जी घर पर आएंगे, अनेक अनेक प्रसंग, अनेक कथा व्याख्या होगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है, समय सर टाइम से आ जाइए, भगवत कथा को सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।